शांति। अभी का विषय है आत्मा की सफाई। आज की मुरली में बाबा ने कहा, आत्मा को साफ करने के लिए मैं तुम्हें क्या देता हूं? लक्ष्य रूपी सोप देता हूं। और सोप माना साबुन, अंग्रेजी शब्द। और क्यों बाबा ने कहा? बाबा को ज्ञान को सरल करना बहुत अच्छी तरीके से आता है। हम जैसे मुरली में भी आज सुना, शशि दीदी कह रहे थे कि उन दिनों में, जिन दिनों में बाबा ने मुरली चलाई है, लक्स नाम का साबुन निकला था। और साबुन से तो सफाई की जाती है, और बाबा ने राइमिंग वर्ड ढूंढा लक्स के बदले लक्ष्य। तो लक्ष्य रूपी सोप देखता हूं, जिससे कि तुम आत्मा को क्या कर सको? साफ कर सको। तो क्या है लक्ष्य रूपी सोप? क्या है लक्ष्य हमारा, और कैसे वो लक्ष्य से सफाई हो जाएगी हमारी, उसको इस्तेमाल करेंगे तो? क्या है लक्ष्य हमारा? पहले ही दिन जब हम शुद्र होते हैं, बाबा के घर में आते हैं, संस्था का परिचय प्राप्त करते हैं, पूछते हैं यहाँ क्या सिखाया जाता है, इस विश्वविद्यालय में क्या पढ़ाया जाता है, यहाँ की पढ़ाई का लक्ष्य क्या है, तो पहले ही परिचय में ही आत्मा का लेसन दे, उससे पहले ही बता दिया जाता है परिचय में कि इस विश्वविद्यालय की पढ़ाई का लक्ष्य है मनुष्य से देवता बनना, नर ऐसी करनी करे जो श्री नारायण बन जाए, और नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बन जाए। ये है इस पढ़ाई का लक्ष्य। अब ये लक्ष्य दे दिया और कह दिया यही तुम्हारा साबुन है, और इस साबुन से क्या करो? आत्मा की सफाई करो। अब बताओ कैसे करेंगे? या साबुन उठा के सफाई, वो साबुन तो हाथ में होता है, हाँ? और मैला कपड़ा लेते हैं, पानी में भिगोते हैं, हाँ? साबुन लगाते हैं, फिर रगड़ते हैं तो साफ होता है। अब ये लक्ष्य दे दिया और बाबा ने कहा यह सोप है तुम्हारा, इससे साफ करो। बोलो कैसे करेंगे साफ? हाँ जी, क्योंकि बाबा ने जब हमें लक्ष्य दिया कि मनुष्य से देवता बनना है, या नर से नारायण और नारी से श्री लक्ष्मी, तो मुझे पहले देखना होगा वो देवता में होता क्या है, उस नारायण और लक्ष्मी में क्या होता है जो मनुष्य में नहीं है, देखना पड़ेगा ना। और वो इधर आएगा तब हम समझेंगे कि हमारी सफाई हो गई और वह बन गए। तो क्या होता है देवता और मनुष्य में, अंतर क्या है? दो आंख, दो हाथ, दो पैर, दोनों के समान है। डबल ताज होता है। तो दो डबल ताज में कौन कौन से दो ताज हैं? एक दिखता है और दूसरा वाला दिखता है कि नहीं दिखता है? एक दिखता है, एक पवित्रता का ताज, अर्थात ही वो ओज, वो प्रकाश, वो तेज, आत्मा का प्रकाश। आत्मा प्योर है तो वो प्रकाश इस स्किन को भी भेद कर बाहर फैलता हुआ दिखाई पड़ता है। जैसे ये खिड़की है, बाहर सूर्य की रोशनी है, वो रोशनी इस पर्दे को भेद कर मुझे दिखाई पड़ती है, दिखाई पड़ती है ना। लेकिन अंधकार होगा तो बाहर नहीं दिखेगा। तो आत्मा भीतर में जितनी ज्यादा प्रकाशित होगी, उतना वो इस देहरूपी पर्दे को भेद कर बाहर आएगी। हॉस्पिटल के अंदर जो एक्सरे मशीन होती है, जो हमारे शरीर के अंदर क्या है उसका पूरा चित्र खींच कर लाती है, उसके पीछे का आधार क्या है? लाइट। जबरदस्त फोकस शरीर पर डाला जाता है कि वो जबरदस्त लाइट, वो फोकस इस देह को, इस हड्डी को भी भेद कर भीतर चला जाता है और उसका चित्र खींच कर लाता है। आप कभी धूप में खड़े हो जाओ दोपहर के 12 बजे, आपके वस्त्रों को भेदता हुआ प्रकाश आपके अंगों को दिखा देता है। नोटिस किया है कभी? तो प्रकाश में वो ताकत है, जितना ज्यादा प्रखर होगा उतना वो भेद सकेगा। तो मनुष्य और देवता में अंतर क्या है कि मनुष्य माना भी आत्मा और शरीर, देवता माना भी आत्मा और शरीर, परंतु फर्क ये है कि मनुष्य में जब मनुष्य की बात करते हैं, आत्मा का प्रकाश, आज बोला ना मुरली में बाबा ने, तुम्हारा प्रकाश क्या हो गया है, उंझा गई है आत्मा, उंझा गई है। तो उसका प्रकाश जिसको कहेंगे डिम हो जाता है, और डिम होने के कारण फिर उसमें शक्ति नहीं कि इसको भेद कर वो बाहर आए। और इसलिए ये अंतर है कि देवताओं का वही प्रकाश जो बाहर आता है तो उसी को दिखाने के लिए क्राउन दिखा दिया, पवित्रता का ताज। और मनुष्य में क्राउन तो छोड़ो, यहां पर भी नहीं दिखता है, फिर वो लिपा पोती करके इसको चमकाते हैं हम लोग। और यही तो कारण है कि हम जितना जितना आत्मा का अभ्यास बढ़ाते हैं, हम महसूस करते हैं हमारे चेहरे जो अज्ञान काल में थे अब वैसे नहीं रह गए हैं। और हम स्वयं नहीं, जो भी लोग आते हैं क्या कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर चले जाओ। जो भी नए लोग आते हैं इस कैंपस में, हेडक्वार्टर में, कोई भी कैंपस हो, कि हरेक के चेहरे में तेज है, कहते हैं ना, क्यों? क्योंकि आत्मा का अभ्यास चल रहा है, दिन ब दिन आत्मा को सफाई आंदोलन चल रहा है ना, आत्मा का सफाई अलग अलग रीति से होती है। रोज एक बार हम बाबा के बन गए, हम मुरली का श्रवण कर रहे हैं, ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं, वो मुझे कितना समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है वो अलग बात है, लेकिन कुछ समय बैठकर हम सुन रहे हैं, वो अंदर जा रहा है, उसमें हम भीग तो रहे हैं ना कम से कम। वो भीगना भी क्या कर रहा है, सफाई कर रहा है। वो सुनी होगी ना कहानी, एक गुरु ने शिष्य को लकड़ी की टोकरी दी और कहा इसमें पानी भरकर, बाहर बाग बगीचे हैं उनको सींचो। लगातार 6 मास तक वो शिष्य ये काम करता रहा। आप समझ गए होंगे कि लकड़ी की टोकरी में जब पानी भरता होगा वो, और जब सींचने जाता होगा तब तक तो पानी उसमें रहता ही नहीं, थोड़ा सा एक हाथ बूंद कोई टपक जाता होगा। और 6 मास में सिंचाई करते करते, क्योंकि पेड़ों को तो पानी सही में मिला ही नहीं, वो तो सूख गए, गुरु ने बुलाकर पूछा तुम ये क्या कर रहे हो 6 मास से, बगीचे को सुखा दिया तुमने पूरा। कहा गुरु जी आपने ही तो कहा था। मैंने जरूर कहा था, लेकिन इससे कुछ आपको लाभ हुआ है जो आप कंटिन्यूस किए जा रहे हो इसको? बाहर में तो दिख रहा है कि बगीचा तो सूख रहा है, लेकिन फिर भी आप किए जा रहे हो, कोई लाभ आपने महसूस किया इससे? कहा हाँ गुरु जी, क्या लाभ महसूस किया? कहे लकड़ी की टोकरी पूरी मिट्टी से सनी हुई थी, जिसको निकालने पर भी निकलती नहीं थी। वो सारी मिट्टी इसकी निकल चुकी है, लकड़ी सॉफ्ट हो चुकी है। और वहां से उस गुरु ने शिष्य को शिक्षा दी। क्यों उसे कहा था ऐसे? क्योंकि गुरु ने जब शिष्य को कहा कि अध्ययन करो, तो वो कहता था, गुरुजी मैं कितना अध्ययन करता हूं, बुद्धि में बैठता तो कुछ भी नहीं है, उससे तो अच्छा मैं छोड़ दूं। लेकिन गुरुजी कहते थे पढ़ना है, पढ़ना है, श्रवण करना है ज्ञान का। तो कहता था मुझे इसमें कोई लाभ ही नहीं दिखाई दे रहा है, वो अंदर कुछ जाता ही नहीं है। और ये प्रैक्टिकल करके गुरुजी ने उसको सबक दे दिया, भले बैठे ना बैठे मिट्टी तो उतर रही है आपकी। तो ये काम तो हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं, मुरली सुन रहे हैं, बहुत सारी क्लासेस भी सुन रहे हैं, तो सफाई तो हो रही है, परंतु अभी संपूर्ण सफाई नहीं हुई है, है ना? कहीं कहीं अटका हुआ अभी भी है। तो सफाई किसकी करनी है ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाना चाहिए कि आत्मा की सफाई मतलब क्या। क्योंकि बाबा कहते हैं बच्चे तुम हो ही पवित्र स्वरूप, तुम हो ही शुद्ध स्वरूप, जो अपने आप में शुद्ध है, जो अपने आप में पवित्र है, उसकी सफाई का क्या सवाल उठता है। जो अशुद्ध हो, जो अपवित्र हो, जो मैला हो, गंदा हो, कुचेला हो, सफाई की आवश्यकता तो वहां पे है। तो जब आत्मा की सफाई की बात करते हैं तो उसका भी अर्थ क्या है? हाँ, लक्ष्य रूपी सोप मिला है, आत्मा की सफाई करो। किसकी सफाई? आत्मा तो है ही शुद्ध स्वरूप। हमने कहा हम बहुत दुखी हैं, हमने कहा हम बहुत अशांत हैं। जिज्ञासु आता है, हम क्या कहते हैं? नहीं भाई साहब, आप हो ही शांत स्वरूप। कहते ही नहीं कहते हैं, आप ये सोचो ही नहीं कि मैं अशांत हूं, आप ये सोचो ही नहीं कि मैं क्रोधी हूं, आप ये सोचो ही नहीं कि मैं दुखी हूं। आप जैसा सोच रहे हो ना वैसे बन जा रहे हो, कहते हो ना सभी। बाबा का ज्ञान मिलने के बाद यही सिखा रहे ना हम सबको कि आप तो हो ही शांत स्वरूप, आप तो हो ही प्रेम स्वरूप, आप तो हो ही शुद्ध स्वरूप। फिर जो है शुद्ध, जो है पवित्र, उसकी सफाई का सवाल क्यों उठ रहा है? उसकी सफाई का सवाल क्यों उठ रहा है? सफाई का सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बाबा ने कहा मुरली में ही आज, बाबा तुम्हें स्मृति दिलाते हैं कि तुम स्वर्ग में कितने साफ सुथरे थे, माया ने तुमको मैला बना दिया है। अब तुमको मैला बना दिया मना किसको? थोड़ा समझने की बातें हैं। क्योंकि एक बार आत्मा परमधाम छोड़ के सृष्टि रूपी रंगमंच पर आती है, कर्म क्षेत्र पर आती है, अर्थात ही आत्मा आकर के शरीर धारण करती है। तो जीवन माना आत्मा और शरीर दोनों, जिसमें से आत्मा चैतन्य है और शरीर जड़ है। इन दोनों का समागम होता है और जीवन चलता है। और जीवन चलता है मतलब कि इंद्रियां मिली हुई है पांच, आंखों से देखने का कर्म हो रहा है, कानों से सुनने का कर्म हो रहा है, मुख से बोलने का, टेस्ट लेने का, खाने का, ये सब कर्म हो रहे हैं। ये सारे के सारे डेटा, सुनने वाला क्या सुना, क्या देखा, क्या खाया, कैसा था टेस्ट, ये डेटा किसके पास जा रहा है, डेटा किसके पास जा रहा है ये वाला। जैसे थाली आई भोजन की, दाल चावल सब्जी रोटी सब कुछ था, उसमें से मैं एक एक कौर उठा के खा रही हूं, वो कहां गया? मुंह से होते हुए, अन्न नली से होते हुए पेट में गया। अब जब दृश्य देखा वो कहां गया, जब कोई बात सुनी वो कहां गया, कहां गया वो, बोलो कहां गया? हां, सबकॉन्शियस में। इसका मतलब जैसे ये शरीर मिला है हमें, जिसके लिए कहा इसमें इंद्रियां हैं, इनको कहते हैं बहिर्करण। देखो दुनिया में साधन उपयोग करते हैं ना, उसको बोलते हैं उपकरण, उपकरण बोलते हैं ना। अगर वही उपकरण बाह्य रूप वाला है तो उसको कहेंगे बहिर्करण, और अंतर वाला है तो उसको बोलेंगे अंतकरण। तो सिर्फ आत्मा और शरीर की बात नहीं, इसके बीच में कोई है, इसके बीच में कौन है? अंतकरण है, जिसको ही क्या कहते हैं, जिसको ही क्या कहते हैं, आपने कह दिया अभी, सूक्ष्म शरीर। तो ये है आत्मा, ये स्थूल शरीर, बीच में है सूक्ष्म शरीर। ये किसका प्रतीक है सूक्ष्म शरीर भी? मन का ही तो प्रतीक है। जो कहा कि मैंने सुना, मैंने देखा, खाया तो इधर गया ना डेटा, चीज इधर गई, सुनने वाली चीज कहाँ गई, देखने वाली चीज कहाँ गई? वो अंतःकरण में गई, चित्त में गई, मन के द्वारा। ये पूरा डेटा इंद्रियों के द्वारा बाह्य जगत से जो डेटा इंद्रियां कलेक्ट कर रही है, वो किसको पहुंचाती है? इंद्रियां इंद्र को पहुंचाती है, और इंद्र कौन है? इंद्रियों का मालिक। कौन है इंद्रियों का मालिक? मन, मन है इंद्रियों का मालिक। इसलिए गीता में आता है, इस देह से, इस शरीर से परे, इस इंद्रियों से परे शरीर, शरीर से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। आता है ना ऐसी गीता में, परे का मतलब क्या? या तो परे शब्द आता है, या तो श्रेष्ठ शब्द आता है, कि इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से श्रेष्ठ बुद्धि है, और बुद्धि से भी श्रेष्ठ आत्मा है। इसका अर्थ क्या? चाहे परे शब्द यूज करो, चाहे आत्मा शब्द, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है हायरार्की के संदर्भ में। किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी कंपनी में चले जाओ तो लोग हायरार्की की बात करते हैं। समझ में आ रहे? हायरार्की मतलब छोटे पद से लेकर बड़ा पद, ऊंचा पद। और उसमें पूछते हैं कि आप कौन सी पोस्ट पे हैं, होता है ना ऐसा। तो जब हमने कहा इंद्रियों से परे मन है, का मतलब मन की पोस्ट इंद्रियों से ऊंची है। तभी तो इंद्रियां डेटा किसको पहुंचा रही है? मन को पहुंचा, ऊंचे वाले के पास पहुंचाना होता है ना नीचे वाले को। पोस्ट के लेवल को अगर देखें तो जो छोटी पोस्ट वाला होता है उसको अपनी ऊंची वाले पोस्ट तक पहुंचाना पड़ता है, फिर उसको अपनी ऊंची वाले, और उसको अपने ऊंची वाले को। तो इंद्रियां डेटा कलेक्ट कर करके किसको देगी? मन को देती है। और मन का कार्य हम क्या बताते हैं जब 7 डेज कोर्स में फर्स्ट लेसन देते हैं? तो विचार करना, संकल्प विकल्प करना। विकल्प का अर्थ क्या होता है? विकल्प का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जब एग्जाम होती है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रश्न एक दिया है और चार पांच विकल्प दिए गए हैं और उसमें से सही वाले को चुनो। तो अंग्रेजी में उसको क्या बोलते हैं, विकल्प को, ऑप्शन। तो कई बार हम लोग विकल्प का सिर्फ एक ही अर्थ निकालते हैं, नेगेटिव संकल्प माना विकल्प, पर इतना ही अर्थ नहीं होता है, ऑप्शन। उदाहरण के लिए, मुझे दिल्ली जाना है कल, तो मन के पास एक बात पहुंच गई, उसमें विचार उठ गया कि अभी मैंने दिल्ली जाना है। अब मन क्या करेगा, बहुत सारे ऑप्शन खड़े करेगा, विकल्प खड़े करेगा, दिल्ली बाय रोड जाऊं, बाय ट्रेन जाऊं, या फिर बाय फ्लाइट जाऊं, है ना। अगर ट्रेन से जाता हूं तो राजधानी भी जाऊं कि आश्रम भी जाऊं, अच्छा एसी में जाऊं कि स्लीपर में जाऊं, एसी में भी अगर जाऊं तो थर्ड क्लास एसी या सेकेंड क्लास या फर्स्ट। बात है सिर्फ एक, दिल्ली जाना है, लेकिन मन कितने सारे ऑप्शन खड़े कर रहा है। इसको कहते हैं मन, मन का कार्य है संकल्प और विकल्प करना। अब इतने सारे जो विकल्प खड़े कर दिए, अब मुझे तो दिल्ली जाना है ना, तो कुछ तय करना पड़ेगा ना इतने सारे में से किसी एक को। लेकिन मन के पास ये अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है। तो मन से ऊंची पोस्ट किसकी है, बुद्धि की, तो बुद्धि के पास लेके जाता है, देखो ये ऑप्शन है। हाँ, बात क्या है, दिल्ली जाना है, लेकिन दिल्ली जाने के लिए इतने सारे ऑप्शन से, अब आप जिस पे स्टैंप लगा दो उसको प्रैक्टिकल किया जाएगा। बड़े ऑफिसर के पास फाइल लेके जाते हैं लेटर लिख के, अगर सर साइन कर देगा काम हो जाएगा। तो बुद्धि क्या करेगी, मन ने तो बहुत सारे ऑप्शंस खड़े करके, इसीलिए कंपनियों में क्या होता है, जो सेक्रेटरी रखे जाते हैं वो क्या होता है कि जो भी बात है आई है, वो ऐसा अच्छा सेक्रेटरी होना चाहिए कि उस बात को, आजकल पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होते हैं ना, इस तरीके से प्रेजेंट करें कि सब कुछ वहां तुरंत दिख जाए। ये होता है, तो मन ये सारे काम करके रखता है बुद्धि के सामने कि बात है दिल्ली जाना है, अब दिल्ली जाने के लिए ये सब है, ताकि बुद्धि को एक झलक में दिख जाए कि इनमें से कौन सा वाला चूज करना है। और एक बार बुद्धि चूज कर लेगी, फिर कर्मचारियों को आदेश किया जाएगा, वापस तो कर्मेंद्रियों के द्वारा उसको कर्म करना है। तो हम क्या बता रहे थे कि इंद्रियां डेटा लेकर आ रही है मन के पास, मन बुद्धि के पास लेके जा रहा है, फिर बुद्धि डिसीजन ले रही है, कोई एक ही ऑप्शन तो चूज करेंगे ना, उसके अनुसार फिर हम कर्म में आएंगे। और उसके बाद और क्या सिखाते हैं, हम हर कर्म की आत्मा पर छाप पड़ती है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ये तो बताते हैं वो कर्म फिलॉसफी में। लेकिन इस लेसन में क्या आता है, मन बुद्धि संस्कार आता है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इम्प्रेशन ऑन द सोल, इम्प्रेशन माना ही छाप। और इसीलिए कहा जाता है कि आप झूठ किसी से भी छिपा लो पर खुद से नहीं छिपा सकते। जो भी कर्म किए हैं आपने, झूठ का, छल का, कपट का, कुछ भी जो भी किया है, आप स्वयं से कभी नहीं छिपा सकते, क्योंकि आपने जो किया तुरंत आत्मा पर उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है। और आत्मा पर रिकॉर्डिंग का मतलब, क्योंकि हम बात कर रहे थे आत्मा की सफाई का मतलब क्या, क्योंकि आत्मा तो है ही शुद्ध स्वरूप, एक्चुअली बात है अंतःकरण की। यह सब अंतःकरण में गिना जाता है। यह शरीर, यह आत्मा, बीच में जो मन है, एक हिस्सा इस साइड है, एक हिस्सा इस साइड है, एक हिस्सा जड़ की तरफ है, एक हिस्सा इधर आत्मा चैतन्य चैतन्य की तरफ है। तो अब बताइए, मन क्या हुआ, जड़ हुआ या चेतन हुआ? मन जड़ हुआ या चेतन हुआ? मन को कहेंगे जड़ भी है चैतन्य भी है, कहेंगे जड़ के भी करीब है चैतन्य के भी करीब है। कैसे मन को जड़ कैसे कह सकते हैं और मन को चैतन्य कैसे कह सकते हैं? ऐसे तो शरीर भी जड़ है, लेकिन चैतन्य आत्मा के कारण यह क्या प्रतीत होता है? चैतन्य प्रतीत होता है। तो ऐसे जो मन है जड़ के भी करीब है और चैतन्य के भी करीब है। ये मन जिसके पास इंद्रियां डेटा लेकर आती है, आंखों ने देखा मन तक पहुंचा, लेकिन अगर बेहोशी आ जाए, व्यक्ति बेहोश होकर गिर पड़ता है ना, और जबरदस्ती उस बेहोश व्यक्ति की आंख खोल ली जाए और उसके सामने फूल रख दिया जाए, उसको दिखाई देगा फूल? तो क्या हो गया उस समय? जड़ हो गया, स्मृति चली गई ना। तो ऐसे ही बाबा ने आज क्या किया, तुम्हारी स्मृति चली जाती है, और फिर स्मृति चले जाने से तुम मैले बन जाते हो। और स्मृति क्यों चली गई? माया ने तुम्हें मैला बनाया, ये कहा बाबा ने। स्मृति भी माया ही बुलाती है हमारी। तो ऐसा क्या हुआ कि अचानक से हमारे जीवन में माया आ गई? हम जब सत्युग में वहां से उतरे परमधाम से, तब तो माया नहीं थी, ये अचानक से कैसे आ गई हमारे जीवन में? अचानक से कैसे आ गई हम? क्या होती जा रही थी? हाँ, अपने स्रोत से उसको निकले लंबा समय हो गया। जैसे जब आप पहले दिन यहां पहुंचे थे, थोड़ी बहुत घर की स्मृति थी, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, उधर का उधर, यहां का यहां, होता है नहीं होता है? तो हम भी जब घर से निकले तो शुद्ध स्वरूप, प्रेम स्वरूप, ये सब स्मृति में थी। और सिर्फ स्मृति, और स्मृति होना माना ज्ञान होना, और ज्ञान होना माना ज्ञाता स्वरूप थे हम उस समय। हम क्या थे? ज्ञाता स्वरूप थे। और क्या थे हम? और क्या थे हम? और क्या थे हम? कल ही शायद आया था मुरली में, आ जाया था कि आत्मा जब शरीर छोड़ेगी उससे पहले साक्षात्कार होगा। कल था कि मैं आत्मा, ये शरीर छोड़ अब तुष्ट। अब साक्षात्कार होना माना क्या होता है? दिखना, कुछ दिख रहा है। साक्षात्कार होना माना कुछ दिखाई दे रहा है मुझे, जिसमें न सिर्फ दिखाई दे रहा है और ज्ञान भी हो रहा है। मतलब हम जब सत्युग में होंगे, हम ज्ञाता स्वरूप भी होंगे और साथ साथ हम दृष्टा स्वरूप भी होंगे। और पहला लेसन जब हमें मिला, हमें बताया गया कि तुम देह नहीं, तुम आत्मा हो। तुम इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर एक एक्टर हो। तुम इंजीनियर नहीं हो, तुम इंजीनियर के रोल में हो। तुम पिता नहीं हो, तुम पिता के रोल में हो। ये सिखाया गया पहला लेसन। लेकिन ये क्यों सिखाया गया? क्योंकि हम भूल गए। कब भूले? सत्युग में नहीं भूले थे, सत्युग में याद था। सत्युग में याद था हम एक्टर हैं। और याद था एक्टर है का मतलब क्या हुआ? आज भी फिल्म इंडस्ट्री में एक्टिंग ही चलती है। तो एक्टर एक्ट्रेस को पता होता है, मैं अभिनय कर रहा हूं, मैं हूं नहीं। पता होता है, जैसे रामलीला होती है, रामलीला में एक्टर्स पार्ट अदा करते हैं। अब किसी गांव में समझो वर्षों से ये पैटर्न बना हुआ है कि दिवाली के आसपास या कोई भी मास में रामलीला यहां होती ही है सपोज, और वर्षों से वही एक व्यक्ति रावण का रोल प्ले कर रहा है, और वर्षों से वही एक स्त्री सीता का रोल प्ले कर रही है। हर वर्ष रावण का और सीता का रोल प्ले करते करते एक वर्ष रावण को लगता है ये मेरी सच्ची सीता है, मैं सचमुच का रावण हूं और मैं इसका हरण कर लूं। अर्थात वो इंस्ट्रूमेंट या एक्टर के भाव से निकलकर कर्तापन के भाव में आ जाता है। समझ में आया? तो हम सत्युग में जब थे, कर्तापन का भाव नहीं था। हम ज्ञाता स्वरूप जरूर थे, हम दृष्टा स्वरूप जरूर थे। तो जब दृष्टा स्वरूप बनते हैं ना, तो दृश्य और देखने वाला, इन दोनों के बीच में एक फासला होता है। इन दोनों के बीच में एक फासला होता है। देखने वाला, अगर मेरे सामने कोई चीज मुझे दिखानी है और एकदम मेरे आंखों के चिपका दो, मुझे दिखाई देगी? थोड़ी सी दूरी चाहिए तब दिखाई देता है। तो दृष्टा स्वरूप माना, मैं जब सत्युग में थी, मैं रोल और रोल प्लेयर, ये दूरी थी। तभी तो कहा बाबा ने कि आपको साक्षात्कार होगा कि ये शरीर में छोड़ने माना फासला है। शरीर में और मुझ आत्मा में क्या है? फासला है। हम तो अलग अलग है ये भान है। पर सतत वैसा करते 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 हम अपने आप को कर्ता समझना आरंभ कर दिया। और जब कर्ता समझना आरंभ कर दिया तो क्या हुआ? जब तक हमने अपने आप को कर्ता नहीं समझा था, लेकिन एक्टर समझ के, दृष्टा समझ के, ज्ञाता समझ के अपने कर्म कर रहे थे, तो हमारे कर्म अकर्म ही रह गए। यही कहते हैं ना हम कि सत्युग त्रेता में हमारे कर्म कैसे होंगे? अकर्म होंगे। लेकिन द्वापर से हमारे कर्म कैसे शुरू हो जाएंगे? विकर्म। क्या मतलब होता है अकर्म का? हाँ? फल की इच्छा। इसीलिए देवताओं में क्या होता है? इच्छा मात्रम अविद्या। तो हमारी बात कहां से शुरू हुई थी? बाबा देता है लक्ष्य रूपी सोप, आत्मा की सफाई के लिए। तो इसलिए मुझे पता होना चाहिए देवता में और मनुष्य में क्या अंतर है। तो जो देवता में है वो मुझे धारण करना पड़ेगा, तब वो लक्ष्य रूपी सोप काम करेगा, और सफाई होगी। तो क्या था उन देवताओं में? ज्ञाता स्वरूप थे, दृष्टा स्वरूप थे, पर कर्ता नहीं थे। और कर्ता नहीं, कर्तापन नहीं था, मतलब मैंपन नहीं था, मेरापन नहीं था। यही तो कहते द्वापर में सबसे पहले क्या जागा, सबसे पहले क्या जागा? देह अभिमान। और देह अभिमान बना ये मैं और मेरा, और वो वहां पर नहीं था। और इसलिए जो भी कर्म किया वो अकर्म हो गया। और अकर्म हो गया का मतलब अंतःकरण में जो कहा कि हर एक्शन की छाप पड़ती है, वो छाप पड़ते हुए भी नहीं पड़ी। अब आप कहेंगे छाप पड़ते हुए भी नहीं पड़ी का मतलब क्या होता है? तो बाबा कई बार कहते हैं देखते हुए भी नहीं सुनो, सुनते हुए भी नहीं सुनो, क्या होता है उसका मतलब? एक कान से सुनो और आंख वाला कैसे निकालोगे? सुनने वाला तो यहां से अंदर जाएगा और इधर से निकालेंगे, और देखने वाला इधर जाएगा फिर इधर राउंड मार के इधर आएगा। फोकस नहीं करना है। तो वही जैसे कहा कि मन बीच में है, इधर शरीर है और इधर आत्मा है, मन बीच में, इधर वाला साइड मन, इधर वाला साइड चित्त। इसीलिए कहा इसको बाह्य मन, इसको कहा अंतर मन। और यहां पे पहले तो इधर आएगा ना, इंद्रियों से कहां आएगा, फिर इधर से इधर अंदर घुसेगा ना। जैसे थाली थी भोजन की, मैंने एक एक कौर उठाया, सीधा पेट में थोड़ी घुसा, पहले तो यहां गया, फिर यहां से अन्न नली से होते हुए नीचे गया। ऐसे ही कोई भी चीज जो हम देखते हैं सुनते हैं, पहले मन रूपी स्क्रीन पर आती है, उसके बाद चित्त के तरफ जाएगी। तो चित्त के तरफ न जाए वो कुछ प्रबंध करना होता है। और वो प्रबंध कैसे होता है? बहुत सहज है समझना, सबके हाथों में मोबाइल है, मैसेज टाइप करते हैं, लेकिन टाइप करते नहीं, नहीं ऐसा मैसेज नहीं भेजना चाहिए मुझे, पढ़ेगा तो उसको बहुत दुख होगा, तो एंटर बटन दबाते ही नहीं है। क्योंकि आपने जैसे एंटर दबाया वो चला जाएगा, लेकिन आपने एंटर बटन दबाया ही नहीं, तो सिर्फ स्क्रीन पर है अभी, अभी सिर्फ स्क्रीन पर है, गया नहीं है, डिलीट करने की मार्जिन है। तो सुनते हुए नहीं सुनो, देखते हुए नहीं देखो, देखा सुना मन की स्क्रीन पर आया है अभी, अब मैं सोचूं क्या इसको अंदर जाने दूं या नहीं, वो मेरे हाथ में मार्जिन है मेरे को अभी भी। ऐसे ही कर्म भी करूं पर उसकी छाप भी नहीं पड़े, जबकि रूल तो यही कहता है कि हर कर्म करेंगे और उसकी छाप पड़ेगी, तो ये क्या नियम टूट जाएगा क्या वहां पे? नहीं, नियम नहीं टूटेगा, कर्म करेंगे छाप भी पड़ेगी, पर कैसी छाप पड़ेगी? एक होता है पानी पर लकीर खींचना, पानी पे अगर आप लकीर खींचो कितनी देर तक टिकेगी वो, कितनी देर तक टिकेगी? खींचा नहीं और गायब भी हो गई। तो ऐसे ही होगा सत्युग में, कर्म करेंगे, छाप माना लकीर पड़ेगी, परंतु फिर भी वो मिट जाएगी। क्यों? क्योंकि जो भी हम कर्म करेंगे, आत्मा का जो ओरिजिनल स्वभाव है, सुख शांति प्रेम खुशी आनंद ज्ञान, ज्ञाता स्वरूप तो हम है ही, हम उसमें रहकर कर रहे हैं। तो जो आत्मा का स्वभाव है उसी में रहकर कर रहे हैं, इसलिए जो छपने जा रहा है वो कोई विजातीय नहीं छपने जा रहा है, सजातीय छप रहा है, उसी जात का छप रहा है। समझ में आ रही है बात? जात नहीं चेंज हो रही, जो छपने जाएगा उसकी जात नहीं चेंज होगी, उसकी जात वही रहेगी जो आत्मा का स्वभाव है, और जो समान होता है वो चिपकता नहीं है, और जो विपरीत होता है वो चिपकता है। जो विपरीत होता है वो चिपकता है, जो समान होता है वो नहीं चिपकता है। क्योंकि हर कर्म हमने आत्मा हूं ज्ञाता स्वरूप में किया है, तो प्रेम और खुशी और आनंद में ही किया है, कोई निगेटिव भाव वहां पर नहीं आया है, और इसलिए कुछ भी उस पर चिपका नहीं। नियम था कि कर्म करेंगे छाप पड़ेगी, पर पानी पर लकीर जैसे छाप पड़ के वो निकल गई। लेकिन जैसे कहा कि देह में रहते रहते पुण्य करते करते हम सोचते हैं मैं पुण्य करता हूं, क्रोध करते करते हम सोचते हैं मैं क्रोधी हूं, मां का रोल प्ले करते करते हम सोचते हैं मैं मां हूं। समझ में आ रहा है ना? तो फिर विरोधी हो गया, फिर कर्तापन आ गया, और इतना ही नहीं कामनाएं जागी, और जो भी कामनाएं जागी वो मेरे ओरिजिनल स्वभाव के विपरीत जागी है। कैसे विपरीत जागी है? सत्युग में भी अलग अलग पोजीशन थी, कोई राजा है, कोई प्रजा है, कोई दास दासी है, कोई कुछ है, वैरायटी होगी, कोई रॉयल फैमिली है, लेकिन जब हम ज्ञान सुनाते हैं, सृष्टि चक्र समझाते हैं, द्वापर की शुरुआत किस दिन हुई होगी? जिस दिन दो राजा ने अपने अपने घरों से बाहर निकलकर देखा बगीचा, वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है ये मेरा है, वो कहता है मेरा है, वो कहता है मेरा, और पहले क्या था? हम सब एक है, हम सब एक है, बस सबको पार्ट अलग अलग मिले हुए हैं और उसको एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन बाद में क्या हो गया? ये मेरा, वो कहता है वो मेरा, क्यों मेरापन? मैं तेरे से बड़ा, तू मेरे से छोटा। जबकि ज्ञान क्या कहता है? तुम सब आत्माएं भाई भाई, एक पिता की संतान। ये सिर्फ पार्ट आपको अलग अलग मिले, लेकिन द्वापर में आते आते ये विस्मृति हो गई कि पार्ट अलग अलग है। हमने सोचा हमारा अस्तित्व ही सबका अलग अलग है। तो जो भी कामना जागी वो मेरी जो ओरिजिनल स्वभाव है उससे विपरीत जागी। अब मैं बड़ा तो मेरे पास सब कुछ आ जाए, उस कामना की पूर्ति के लिए सामने वाला नहीं मान रहा है, मैं उस पर गुस्सा करूंगा। तो गुस्सा करना आत्मा का स्वभाव है? नहीं है। और अगर मान लिया मेरी पूर्ति हो गई पर उतने से संतुष्टि नहीं, और चाहिए और चाहिए, फिर लोभ जागा और लोभ जागा। और चूंकि अब ये मेरे हिस्से का हो गया है, अब किसी ने भी इसको हाथ लगाया क्योंकि उसके प्रति अभी मोह भी जागा। तो जो भी जागा कामना के नाम पर वो क्या था? मेरे ओरिजिनल स्वभाव के विपरीत था, और इसलिए अब जो भी कर्म किया वो उसके ऊपर छपता गया, छपता गया, छपता गया, और अंतःकरण मैला होता गया, होता गया, होता गया। और इसलिए जब अंतःकरण मैला होता गया तो यहां जो आत्मा है, जो है शुद्ध स्वरूप, इसका प्रकाश जब इससे गुजर के बाहर आ रहा है, ये बीच वाले रास्ते में ही तो बाधा खड़ी है, बीच वाले रास्ते में ही बाधा खड़ी है, तो वहां से गुजर के नहीं आ पा रहा है। दर्पण है, दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, इसका प्रतिबिंब वहां तैयार होगा, दिखाई पड़ेगा। परंतु अगर उसके ऊपर धूल जम जाए तो दिखाई पड़ेगा। और दर्पण अगर समतल न हो, लहरदार हो, तो दिखाई तो पड़ेगा लेकिन जैसा है वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। दर्पण अगर स्थिर नहीं हो, हिल रहा डुल रहा हो, तो दिखाई तो पड़ेगा पर जैसा है वैसा नहीं दिखाई पड़ेगा। तो द्वापर से हमारा चित्त अपने ऊपर क्या उड़ता गया, मैल की परत उड़ता गया। तो न सिर्फ हमारा चित्त गंदा हुआ है, लेकिन चित्त पर गांठें भी आ गई है, गांठें भी आ गई है। और जब गांठें आती हैं तो क्या होता है, गांठें आती है तो क्या होता है, जैसे पाइप होता है जिससे पानी नल से नल को लगाया गया और वो पानी बगीचे को दे रहे हैं, लेकिन पाइप में गांठ आ गई, मुड़ गया, अब क्या होगा, वहां से सप्लाई रुक जाएगा। तो जब आत्मा की सफाई की बात चल रही है, मतलब गंदगी को भी निकालना है और गांठों को भी निकालना है। और गांठों को निकालना मतलब गांठ कोई अलग चीज होती है, पाइप से कोई अलग चीज होती है, वो पाइप ही सिर्फ लपेट गया है और उसको कह दिया गांठ। गांठ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, गांठ का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लेकिन स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी जब वो गांठ सिर्फ वो मुड़ गई है पाइप या रस्सी, तो रास्ता ब्लॉक हो गया है। ऐसे ही जब आत्मा की सफाई की बात आ रही है, तो एक तो हमें जो भी विकार है उसके प्रति हमें सजग होना है, उसके प्रति सजग, क्योंकि बाबा ने कहा स्मृति चली गई और इसलिए माया का अटैक हुआ। लेकिन अगर स्मृति आ जाएगी तो जैसे ही लाइट चली गई, यहां अंधेरा छा गया, तो न आप मुझे देख सकेंगे न मैं आपको देख सकूंगी, लेकिन हम वहां पर प्रेजेंट जरूर है। लेकिन जैसे ही लाइट आई, हम एक दूसरे को देखने लग गए। लेकिन लाइट आई तो क्या अंधकार को बोलना पड़ा था जाओ यहां से, यहां से अंधकार चले जाओ, लाइट आ गई है, वो फटाफट चला जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं जैसे ही स्मृति आती है अर्थात ज्ञान आता है, अज्ञान तुरंत मिटता है। और अज्ञान तुरंत मिटता है का मतलब अब जब हम अंतर्मन में झांकते हैं तो मुझे दिखाई देता है ये जो मैं क्रोध करता हूं ना, ये मैं सही नहीं करता हूं, ये जो मैं चिड़चिड़ा करता हूं ना चिड़चिड़पन, ये मैं सही नहीं कर, ये दिखने लग जाता है, ये दिखने लग जाता है कि ये मेरे स्वभाव की अलग वाली चीज है, मैं इससे अलग हूं। तो वो दृष्टा फिर जागृत होता है, दृष्टा भाव जो सत्युग में था, त्रेता में था, जो द्वापर में आके क्या हो गया, खत्म हो गया। तभी तो हमने इसको ही सब कुछ माना ना, वरना ये दो अलग है तो इसके बीच में फासला था ना, तो अलग होने के नाते मैं दृष्टा इसको देख रही थी कि मेरे से अलग है, परंतु द्वापर आते आते ये फासला खत्म हो गया। तो मैंने सोचा ये मैं हूं, परंतु बाबा आए, बाबा ने ज्ञान देना शुरू किया, समृद्धि आई, मैं इससे अलग हूं। मैं इससे अलग हूं तो फिर मैं क्या करती हूं, अपने स्वभाव में टिकना आरंभ करती हूं। तो इसलिए क्यों बाबा स्मृति को इतना महत्व देते हैं, याद करो बच्चे तुम कौन थे और क्या हो गए हो, अर्थात दूरी खड़ी करो, वर्तमान में क्या हूं और मैं था क्या, इस दो के बीच में दूरी खड़ी करो, दृष्टा भाव को जागृत करो और कर्ता भाव, जो मेरा मैं कर्ता नहीं हूं पर कर्तापन लाया और कहा इच्छा मात्रम अविद्या वाली स्थिति, जिसको इका हर कर्म करो तो एक होता है आत्मा पर जो पहले ही चढ़ी हुई मैल है उसको धोना, जो गांठें हैं उसको खोलना, और दूसरा होता है अब मैल नहीं चढ़े, अब गांठें नहीं बने, जो हो गया है उसको निकालना है। ऐसे ही होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो बीमारी बताते हैं ये इस कारण से हुआ है, ये दवाई लेंगे ये परहेज करना तो ये निकल जाएगा और फिर ये ऐसी गांठ फिर से नहीं बनेगी। तो दो काम करने होते हैं जब आत्मा की सफाई, जो बाबा ने कहा लक्ष्य रूपी सोप देकर बाबा आत्मा की सफाई करते हैं। तो लक्ष्य सदा याद रहे, मैं देवता हूं। देवताएं कैसे थे, इच्छा मात्रम अविद्या थे, उनके कर्म कैसे थे, अकर्म थे, क्यों कर्तापन नहीं था, अपने आप को एक्टर समझते थे, निमित्त समझते थे, इंस्ट्रूमेंट समझते थे, और मैं तो हर कर्म में मैं बन कर रहा हूं, तो इसलिए मैल चढ़ती जा रही है। जिसको ही बाबा कहते कर्म, हम कहते ना कर्मातीत कैसे बनेंगे, कर्मातीत का मतलब क्या होता है कि कर्म करना छोड़ दे, बाबा ने तो अंत तक कर्म किया, पर कर्म ऐसे हो बिना किसी कामना के, बिना किसी कर्तापन के भाव के, तो कर इस प्रकार के किए हुए कर्म आत्मा पर कैसे होंगे, पानी पर लकीर की तरह छाप पड़ते पड़ते ही छाप का कोई नाम निशान नहीं दिख रहा है। तो अभी हम और नहीं चढ़ाए, लेकिन चढ़े हुए को साफ करें। तो एक तो कहा कि ज्ञान का श्रवण, जो पहले कहानी बताई टोकरी वाली, और दूसरा बाबा कहते हैं योग अग्नि से। आज ही था ना मुरली में कपड़े की धुलाई, शशि दीदी शेयर कर रही थी ना कि कहां धोबी घाट था और कैसे कपड़े भिगा के रखते थे और कपड़ों को सटकते थे। तो बाबा कहते हैं दो तीन तरीके हैं, या योग अग्नि से प्यार से, या फिर सेवन डेज कोर्स में सुनाती है बहने हमारी कि सफाई कैसे करनी होती है ना। तो हम तो बाबा के बच्चे हैं, तो बच्चे तो प्यार से ही सब करते हैं, तो योग अग्नि जलाकर। तो अब योग अग्नि कैसे जले, किसको कहते हैं योग अग्नि, कैसे योग में रहेंगे, बाबा की याद, कैसी वाली याद, हाँ डेफिनेटली जो भी आप समझते हो वो सब सही है, परंतु एक एडिशन जो मैं करना चाहती हूँ, हम याद में जब बैठे बेशक हम कमेंट्री से शुरू करते भीतर भीतर संकल्प करते, लेकिन वो करते करते बाबा के प्यार में उसके स्वरूप में इतने खो जाए कि संकल्प भी उठने को तैयार नहीं, अभी संकल्प भी उठने को तैयार नहीं है, क्योंकि मन भी एक उपकरण है, तो उस उपकरण को भी यूज न करें और सिर्फ उसमें खो जाएं, जिसको बाबा कहते हैं परम धाम में आकर सिर्फ और सिर्फ क्या करो, मेरे पास आकर बैठ जाओ। और जब मैं उसके पास जाकर बैठोगे कि जहां संकल्प भी उठने को तैयार नहीं है, वो जो आपकी शांति वाली स्थिति होगी, उस शांति वाली स्थिति में ही ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं ना, तो डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले क्या करता है, एनेस्थेसिया देता है, क्यों देता है? अगर वो पेशेंट हिलेगा तो जो कट करना था वो तो कट नहीं होगा, जो नहीं कट करना वो कट हो जाएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, है ना। तो ऐसे ही बाबा मेरे पर सर्जरी कर सके, मेरे अंदर की गांठों को खोल सके, मेरी मैल को निकाल सके, जिसको कहते विकर्मों का बोझा, वो तभी संभव है जब हम एकदम शांत। और वो शांत वाली स्थिति बहुत ज्यादा लंबी नहीं भी हो सकती है, लेकिन वो शांत वाली स्थिति भले छोटे समय के लिए हो, कम समय के लिए, लेकिन उसमें ही बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, उसमें ही बहुत बड़ा कार्य हो जाएगा, बहुत सारी गांठें खुल जाएगी, कि जिस गांठें खुलने के बाद, जिस सफाई होने के बाद, अब मैं जब कर्म क्षेत्र पर आता हूँ, तो जो जो संबंध में मेरी गांठें थी, मैं उसको उस रूप में अब नहीं देखता हूँ, जो जो मैं जिसके प्रति सोचता था ये ऐसा है वैसा है, अब मैं उसको उस रूप में नहीं देखता हूँ। मैं किस रूप में देखता हूँ? दर्पण साफ हो गया तो आत्मा जैसी है वैसी ही दिखेगी, तो मैं आत्मा के रूप में देख सकता हूँ कि जैसे मैं आत्मा थी, जर्नी पर मेरे ऊपर मिट्टी चढ़ी थी, मैंने पुरुषार्थ किया, मेरी मिट्टी उतरी, पर इस आत्मा ने अभी इतनी पुरुषार्थ नहीं किया, मिट्टी चढ़ी है, पर ओरिजिनल आत्मा कैसी है? तो गांठें बनना हमारी, जो नई गांठें नहीं बनेगी, नई मैल नहीं चढ़ेगी, और पहले वाली तो बाबा ही सफाई करेंगे। है क्या हमारे पास इतनी ताकत इतनी सफाई करने की? नहीं है। हमारी एक ही ताकत है बाबा की ये श्रीमत, बच्चे परम धाम में आकर सिर्फ और सिर्फ कुछ घड़ियों के लिए मेरे पास आकर बैठ जाओ, मेरे साथ बातें करो। कभी नहीं बोलता है वो, चार धामों के लिए बोलता है कि यहाँ पे ये करो, यहाँ पे ये करो, सूक्ष्म वतन के लिए भी बोलता है, लेकिन परम धाम के लिए बोलता है मेरे पास आकर बैठ जाओ। तो जब उसके पास बैठ जाएंगे तो उसके वाइब्रेशन मेरे पास आकर के मेरे वाइब्रेशन की भी फ्रिक्वेंसी उसके जैसी वाली पर सेट कर देंगे, अर्थात बाबा मुझे अपने जैसा बनाएगा। यही तो लक्ष्य है, सिद्ध देवता नहीं, पाप समान। क्या है लक्ष्य हमारा? वो तो नयों को सुनाना पड़ता है कि मनुष्य से देवता, नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी। तो नारायण और लक्ष्मी तो उधर होंगे, संगम पर क्या है? बाप समान बनना है मुझे, संपन्न और संपूर्ण। तो ऐसा योग हमें करना होता है और इसीलिए आपको एकांत का समय दिया गया है कि 10 से 10:30 एकांत में बैठो। शाम को भी 5 से 6 आप सोचते होंगे इतना एक घंटा बिना कमेंट्री का, इससे तो अच्छा आप घर में होते कमेंट्री चलाए होते, इससे तो अच्छा है कि मैं बाहर जाके बैठ जाऊं और अपना वो मोबाइल का गीत बजा के कान पे डाल दूं। ये कैसा एकांत दे दिया गया हमें? पर इस एकांत की इम्पोर्टेंस को समझो। यही एक बहुत बड़ी कमी है हमारे ब्राह्मण जीवन में। शुरू के दिनों में बहुत इसका महत्व था, मौन में रहते थे। और आज हम कहते हम रहना तो चाहते हैं परंतु इतनी सेवाएं हैं क्या करें। लेकिन भट्टी आपको एक सुअवसर मिला हर प्रकार की जिम्मेवारी से मुक्त। इस एकांत का फायदा उठाओ कि जिस लक्ष्य से आए हैं योग तपस्या भट्टी करने, महसूसता द्वारा परिवर्तन करने, उसके लिए ही एकांत है। तो आज का शाम का समय 5 से 6 का दृष्टा बनकर अपने भीतर झांकना और झांक कर दूरी क्रिएट करना है। भले अंदर में क्रोध, पर मैं क्रोधी नहीं हूं, मैं तो शांत स्वरूप हूं। ये स्मृति ही, ये जागृति ही उस क्रोधी वाले नेचर का क्या कर देगी? खात्मा कर दे। दिया जलाते ही अंधकार गायब हो जाता है। अंधकार, वो क्रोध आया कब? जब अज्ञान आया था। लेकिन अब ज्ञान आ गया तो जैसे ही जागृति आएगी तो ये सब अपने आप, सिर्फ जागृति, अवेयरनेस, एक दृष्टा भाव, और वो सब खत्म हो जाएगा। और उसके बाद फिर उस परम धाम पे जाकर एकांत में हो जाओ। एकांत का यही अर्थ होता है एक के अंत में खो जाओ, एक के अंत में कमेंट्री नहीं चलाओ, ये नहीं होता उसका अर्थ। एक के अंत में खो जाओ तो वो आप पर काम करेगा और आप आत्मा स्वच्छ, साफ, सुथरी आत्मा, माना बीच में जो मैल आया था चित्त के ऊपर, क्योंकि बीच में आत्मा इधर है और इधर शरीर बीच में, तो फिर ये चित्त साफ हो जाएगा। यहां से सब कुछ पावरफुल इंद्रियों के माध्यम से कर्म क्षेत्र में रेडिएट होता जाएगा। तो ये भट्टी है आत्मा की सफाई के लिए। आज भी आपके पास वक्त है, इसका पूरा पूरा सदुपयोग करना। ओम शांति।